फिर अगला वाक्य है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला का वाइस मदीना को तीन बातों से मना करना। इमाम अहमद ने शाबी से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अहले मदीना के वाइस इब्ने अबी साहिब से फरमाया, तीन बातों की पाबंदी का मुझसे अहद करो वरना मैं तुमसे झगड़ा करूँगी। उन्होंने अर्ज़ की, वो बातें क्या हैं उम्मुल मोमिनीन, मैं आपसे इनकी पाबंदी का अहद करता हूँ। उन्होंने फरमाया, सजा। सजा दुआ क्या होती है भाई? सजी सजाई, काफ़िए रदीफ लगा कर, तकल्लुफ़ है जुमले जोड़ने के लिए, काफ़िए से काफ़िया मिलाया हुआ जुमला। अगर बिला तकल्लुफ़ बोलते हुए अच्छे खूबसूरत लफ्ज़ जो दुआ के आगे, इट्स फाइन। बट बाज़ लोग तो कहते हैं फ़लाँ दुआ बड़ी अच्छी कराता है, फ़लाँ को बुलाएं जी वो दुआ करें, और कोई गा गा के और फिर शेरों की सूरत में, तो ये पसंदीदा नहीं है। मुझे तो कभी कोई कह दे ना आज आपने बड़ी अच्छी दुआ कराई, तो मुझे गम लग जाता है वल्ला ही कि ये इन्होंने सुन ली है, पता नहीं अल्लाह ने सुनी है कि नहीं। क्योंकि दुआ तो होती है जो आपके दिल से निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी रदीफ़ मिला के दुआएँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह और आपके सहाबा इस तरह से दुआ नहीं किया करते थे। आप लोगों के मियार में एक और मियार भी आज के दौर में परखिएगा, और वो क्या है, फुलां तो बड़ा ही रुलाते हैं, मुझे किसी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े मारूफ स्पीकर हैं माशाल्लाह, तो कोई उनके नाम कहते हैं कि वो दुआ कराते हैं, एक घंटा कराते हैं, रो रो के सारा मजमा रोने लगता है। भाई रोने वाली दुआ कराएं, ठीक है दिल सोजी और बात है, आंसू निकल आए और बात है, लेकिन जानबूझ के लोगों को रुलाना कि अल्लाह मैं आ गया हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती शो करनी, ये चीज़ें भी तकल्लुफ़ में आती हैं। इस्माइल जो हदीस के एक रावी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह और सहाबा के ज़मानों को पाया, वो ऐसा नहीं करते थे। और हर जुमे यानी हर हफ्ते में एक दफ़ा लोगों को वाज करना, आम लोगों को एक दफ़ा वाज करना चाहिए, यानी जिन लोगों का शौक़ नहीं, रुझान नहीं, तलब नहीं है जिनके अंदर, तो उनको बस वंस अवाइल क्लास देनी चाहिए, एक दफ़ा दर्स दे दिया जाए, और अगर तू इस पर राज़ी ना हो तो दो मरतबा, और अगर तू इस पर भी राज़ी ना हो तो तीन दफ़ा। लोगों को इस किताब यानी कुरान करीम से बेजार ना कर देना, और मैं तुझे इस तरह ना देखूँ कि लोग अपनी बातों में मशगूल हों और तू आते ही इनकी गुफ्तगू को मुनक़ते करके वाज शुरू कर दे। लोगों को अपनी बातों में मशगूल रहने दो, हाँ अगर वो तुझसे वाज की फरमाइश करें तो इसको नसीहत करना। कितना खूबसूरत जुमला, मैं कहती हूँ आज गोल्डन वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत है। आज कई लोगों ने कोई मौका ही नहीं छोड़ा लोगों को नसीहत करने का और दीन को बदनाम करने का, शादियों में खड़े होकर दीन से सुना रहे हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोल के लोग आम लोगों को दीन से दूर करते हैं, नहीं करना चाहिए। लोग बातें करें और आप आके बात शुरू कर दें, कभी भी नहीं करें। जब लोग खुद कहें ना कुछ कहें, पूरा माहौल बना के बात करें, बात लोग दर्द शुरू करते हैं, तुम लोग भी बातें करें। अच्छा बात अब कभी कभी ऐसा, खासतौर पर अपने ही मुल्क में ऐसा होता है, दर्द शुरू होने लगे लोग स्टिल बातें ही कर रहे हैं ना। अच्छा कोई कह जी खामोश हो जाएं, नहीं नहीं आप शुरू करें, ये खुद ही चुप हो जाएंगे। मैं तो कभी ना करूं, मैं तो एक लफ्ज़ नहीं बोलती जब तक सारे नहीं चुप करते, कि मुझे कुछ सुने भी ना तो मैं बोलती रहूं। तो ये अदब है। आप भी जब अपने तौर पर इर्द गिर्द छोटे बड़े लोगों को पढ़ाएं बताएं, तो ये चीज़ सामने रखें कि आपने उनको किस तरीके से टैकल करना है। थोड़ा किसी को शुरू में एक दिन के जोड़िए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन पर लाइए, फिर 3 दिन पर लाइए। अब इसका सवाल एक पैदा होता है, क्या 3 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए? ये आम लोगों की बात है। अबू हुरैरा जैसी भी तो मिसालें मौजूद है ना, कि जो उठते ही नहीं थे उस जगह से, सुबह भी पढ़ते शाम भी पढ़ते और छुट्टी तो करते ही नहीं थे। तो वही बात पीछे याद रखे, तलब बढ़ती जाएगी तो आपकी डोज फिर बढ़नी चाहिए। क्या पता चला कि एहतसाब के दर्जात में एक दर्जा धमकी देना भी है। आयशा ने इस दर्जे को इस्तेमाल किया। इस दर्जे का इस्तेमाल हर कसो नाकिस के लिए मुफीद और मुनासिब नहीं। हर बंदे को आप धमकी नहीं दे सकते, यानी जिस पे आपका मान है ना आप उसको धमकी दे सकते हैं, अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी मैं आपसे बात नहीं करूँगी, अगर आप ये काम नहीं करेंगी तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी। मिसाल देती हूँ, ये मान की बात है। अब रात जाते लोगों से आप क्या, मैं बात नहीं करूँ, वो कहते नहीं करते तो ना करें, मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, वो कहते 100 दफ़ा हो जाइए, हमें क्या लगे। तो हर जगह धमकी नहीं चलती। फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से उम्मुल मोमिनीन के मुकाम और मर्तबे की बिना पर इस दर्जे का इस्तेमाल मुफीद रहा, यानी किसी को धमकी देते वक्त पहले अपना स्टैंडर्ड भी देख लें कि लोग आपकी धमकी के बाद ज़रा ठीक हो जाएंगे या और ही मजाक करेंगे आपका। फिर उम्मुल मोमिनीन ने अपनी तफसीली गुफ्तगू से पहले इजमाली खाका, इजमाली क्या होता है, खुलासा, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का रिकैप सा वो पेश कर देना, वो पेश किया। इस असलूब के इख्तियार करने से सामे की तवज्जो के हसूल में काफ़ी आसानी हो जाती है। पहले थोड़ी बात बताएं, आज हम ये पढ़ेंगे, फिर तवज्जो बढ़ जाए, शौक आता है, अच्छा अब ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, अच्छा आज क्या पढ़ा था, एंड पे भी खुलासा कर दें, तो लिखा पढ़ा हुआ जो है ना वो इस तरह जम जाता है जैसे लेयर्स लगती हैं। आप एक सिंगल लेयर केक खाते हैं वो भी अच्छा होगा, लेकिन जिसमें काट काट के कहीं फ्रूट डाल देते हैं, कहीं क्रीम डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट ज़्यादा होता है। तो पढ़ाने के अंदाज में ये एकदम गाड़ी नहीं चला लेनी चाहिए, तरीके से सुकून से थोड़ी बात, बड़ी बात, गहरी बात करते रहना चाहिए। फिर इसी तरह सजी सुजाई दुआ से रोकने में हज़रत आयशा की दलील ये थी कि सहाबा और अल्लाह के नबी ऐसा नहीं करते थे। तो क्या पता चला कि दुआ का बेहतरीन और सही तरीका वही है जो कि अल्लाह के नबी और आपके सहाबा का था। फिर इसी तरह हज़रत आयशा ने कसरत वाज से मना फरमाया कि लोग कहीं दीन से बेजार ना हो जाएं, और अल्लाह के नबी हर रोज़ वाज नहीं करते थे। इमाम बुखारी ने अबू वाइल से रिवायत नकल की और वो बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद लोगों को हर जुमे रात के दिन वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने इनसे फरमाइश की, ए अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूँ कि आप हर रोज़ वाज फरमाया करें। उन्होंने फरमाया, सुनो, ऐसा करने में मेरे लिए ये रुकावट है कि मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए उकताहट का सबब बन जाऊँ, और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त इस तरह तलाश करता हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज के लिए हमारे औकाते फरागत का ख्याल रखते थे, ताकि हम कबीदा खातिर ना हो जाए। बात वाज़े, अल्लाह करे हमें ये हिकमतें आ जाएं। और इसी से ही देखिए, कोई बोलता है तो दिल करता है रुके ही ना, और कोई बोले तो दिल करता है कि वक्त ही ख़त्म हो जाए। ये सारी बातें हमारे बोलने वालों के नक्श के होते हैं, जो हम अक्सर सामईन पे लगा देते हैं कि जी वो ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। अल्लाह ताला हमें खुद भी हिकमत दे। फिर उम्मुल मोमिनीन ने इस बात की ताकीद फरमाई कि इसी वक्त लोगों को वाज़ सुनाया जाए जबकि वो दिल जमई से सुनने पर आमादा हों, और वाज़ और इरशाद में इस बात का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कितनी अमल की बातें। इस पे तो हमें से हर एक को सोचना है ना, अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द रहते हुए इन चीज़ों को नोट करना है। आयशा रज़ील तलन्हा के इब्ने उमैर को लोगों को मायूस और बेजार करने से रोकना। वाज़े मदीना तैबा इब्ने अबी साहिब की तरह हज़रत आयशा ने उबैद बिन उमैर को भी वाज़ो नसीहत में लोगों के हालात को पेश नज़र रखने की तलकीन फरमाई। इमाम बगवी ने रिवायत नकल की कि यकीनन आयशा ने उबैद बिन उमर से फरमाया, अलम उहद्दस अन्नका तजलिसु व युजलसु इलैक, क्या मुझे बतलाया नहीं गया कि यकीनन तो वाज़ो नसीहत के लिए बैठता है और लोग तेरे पास सुनने की खातिर बैठते हैं। इसने अर्ज़ किया, बला या उम्मुल मोमिनीन, क्यों नहीं है उम्मुल मोमिनीन, यानी आपको दुरुस्त और सही इत्तला मिली है। कालत वैयाका व इमलाल नासी व तकनीतहुम, उन्होंने फरमाया, लोगों को बेजार करने से और उन्हें रहमत इलाही से मायूस करने से इज्तनाब करना। और यह भी रिवायत किया गया कि उन्होंने इससे फरमाया, उकसुस यौमन ला तुमिल्लन नास, हफ्ते में एक दिन बात सुनाओ और लोगों को बेजार ना करना। पिछले किस्से से जो बातें मालूम हुई थी उसमें एक ये भी थी कि वाज देने वाले और खुतबा देने वाले जो हैं उनको लोगों को अल्लाह से मायूस नहीं करना चाहिए। बाकी बातें पीछे वाली हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है कि लोगों को मायूस ना करें। आपके दर से उठकर लोगों का बीपी ना लो हो जाए और वो ऐसे ही ना सोचे कि आप गए कि आप गए। नहीं, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअन इन्नहू हुवल ग़फूरुर रहीम। आप कह दीजिए कि मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर गुनाहों का इर्तकाब करके ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला बेहद मेहरबान है। ठीक है, ये भी नहीं कि लोगों को गुनाहों की छूट दे दें, ढील दे दें, और ये भी नहीं कि नेकी करने वालों को भी कहें, आपको क्या पता आपकी नियतें ठीक हैं कि नहीं, आपकी नमाज़ें कबूल हो रही हैं कि नहीं, अल्लाह ने आपसे कुछ नहीं कबूल करना, इस तरह के नेगेटिव जुमले नहीं बोलने चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि आज के दौर में पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। तकलीफ़ के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान और ख़ास तौर पर अपने मुल्कों वाले नेगेटिव हो गए हैं, हर चीज़ में नेगेटिव, चिड़चिड़े, गुस्से वाले, जले भुने कटे कटाए। शायद हमारे मुल्क का माहौल ऐसा बन गया, और उसकी वजह भी हम खुद हैं। हम वक्त पे नहीं निकलते, लेट निकलते हैं, फिर हमें फ़ोन आते हैं, फ़ोन नहीं अटेंड करते, हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक जैम होता है, फिर हमें गुस्सा आता है। यानी हम अपना पार्ट अगर प्ले कर लें तो आधे से ज़्यादा मसले तो हम खुद ही ठीक करेंगे। ये सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई गवर्नमेंट ने या अमेरिका ने चाइना ने ये मसाइल नहीं दिए हुए, ये हमारे अपने हैं। लेकिन किरदार साजी की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। और लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से बिल्कुल ना बेखौफ करना है और ना बहुत ज़्यादा खौफ दिलाना है। वाज़ो नसीहत की सही सूरत यह है कि रहमत इलाही की उम्मीद और अजाब इलाही का खौफ दोनों ही को दिलों में पैदा करने और बेदार करने की कोशिश की जाए। फिर अगला पॉइंट क्या है, मुज़म्मते दुनिया की आड़ में ज़िक्रे दुनिया में खोने पर राबिया रहमहुल्ला की तनकीद। तीन अशख़ास हज़रत राबिया अदविया के पास इकट्ठे हुए, वो मुज़म्मते दुनिया की आड़ में दुनिया ही के तस्करों में महव हो गए। इस पर उन्होंने इन पर तनकीद फरमाई, हाफिज़ इब्ने जौज़ी ने अज़हर बिन मिरवान से नकल किया है और उन्होंने बयान किया, रबाह कुसी सालेह बिन अब्दुल जलील और कल्लाब राबिया के पास हाजिर हुए। अब आप देखिए कि राबिया बसरी का नाम आपने सुना होगा, ये वही हैं बसरा की रहने वाली एक परहेजगार इबादत गुजार औरत थी, अल्लाह ताला के लिए खुशियो खुदू भी रखती थी, कुनियत उनकी उम्मे अमर थी और नाम राबिया बिनते इस्माइल था। लेकिन बाज़ लोगों ने इनके नाम के साथ बहुत ज़्यादा रहबानियत और रूहानियत की कई चीज़ें वाजे की हुई हैं जिसकी बातों पर समझ नहीं आती। वल्लाहु आलम, एक नेक खातून थी, अगर कोई कमी बेशी थी तो अल्लाह ताला उनकी माफ़ कर दे। वो मजम्मत करते हुए दुनिया के तस्करे करने लगे। इस पर राबिया ने इनसे फरमाया, यकीनन मैं देख रही हूँ कि पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे दिलों में घुसी हुई है। उन्होंने अर्ज़ की, आपको हमारे बारे में ये वहम कहाँ से हुआ है? उन्होंने फरमाया, तुमने उस चीज़ को देखा जो कि तुम्हारे दिलों के सबसे ज़्यादा करीब है, और इसी के मुतल्लिक गुफ्तगू शुरू कर दी। यानी बहुत ज़्यादा दुनिया को कंडेम करना भी दुनिया की मोहब्बत की अलामत है। देखिए इसकी मिसाल देती हूँ, मसलन जेवर है आपके पास, एक ये कि पूरा वक्त उस जेवर ही के अंदर खोए रहना और उसको इतना अहम समझ लेना कि अपनी जान चली जाए लेकिन वो ना चले, समझ रहे हैं? ये भी असल में उसकी मोहब्बत की अलामत है। और मिसाल है कपड़ों को ले लीजिए, कपड़े पहनने इस्तेमाल के ख़राब तो होंगे ना, इट्स ओके, जान का रोग बना लिया, पहन लिया था, दाग लग गया, ख़राब हो गया, अब धोना पड़ेगा, अब ये ख़राब हो जाएगा, तो बाहर आप उसकी केयर कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में उसकी इज्जत और तकरीम है। बात समझ आ रही है आपको? तो दुनिया को बाज़ दफ़ा हम बुरा कह रहे होते हैं लेकिन जो बहुत बुरा कहते हैं ना उनकी नज़र में भी बहुत अहमियत है। मतलब अगर इधर पानी का ग्लास है, अगर मैं इसका जिक्र ज़्यादा करूँ ना करूँ, दैट मीन मेरे लिए इतना अहम नहीं, लेकिन मैं इसका पॉजिटिव या नेगेटिव जिक्र ही करती रहूँ तो आप सोचेंगे कि इनके लिए पानी का ग्लास ये बहुत अहम है, ये मुराद है। यानी कुछ लोग दुनिया कमाने में बहुत खोए रहते हैं और कुछ दुनिया को कंडेम करने में खो जाते हैं, दोनों में दिख रहा है कि दुनिया की बड़ी अहमियत है। इसको ओवरलुक करके जिस तरह से वक्त गुजरे उस तरह वक्त गुजारना, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। फिर इसके बाद आखिरी पॉइंट है हमारे इस टॉपिक का कि वाज़ में जिक्र दुनिया करने पर राबिया रहमहुल्ला की तनकीद। हज़रत राबिया ने इस शख्स पर भी तनकीद फरमाई जिसने अपने वाज़ में दुनिया का तذکرہ छेड़ा। दलील है, हाफिज़ ज़ाहबी ने खालिद बिन खदाश से नकल किया है, उन्होंने बयान किया, राबिया ने सालेह मुरी को अपने वाज़ के दौरान जिक्र दुनिया करते सुना तो उन्होंने इसको आवाज़ दी, ऐ सालेह, जो शख्स किसी चीज़ को पसंद करता है इसका तذکرہ ज़्यादा करता है। नोट करें वही बात, कुछ लोग दुनिया का तذکرہ नेगेटिवली ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन असल में फिर वो उनको वो पसंद कर रहे होते हैं। जिसको किसी चीज़ की अहमियत नहीं है वो तो उसका ज़्यादा जिक्र भी नहीं करेगा। तो इन दोनों किस्सों से क्या पता चला? कि हज़रत राबिया की बयान करदा बात में इन लोगों के लिए शदीद तंबीह है जो फहाशी और यानी और बेहयाई की मजम्मत के बहाने ऐसी बातों का कसरत से तस्करा करते हैं। दर हकीकत इनके गंदे नफूस गंदी बातों में अपने लिए सामान्य लज्जत पाते हैं और वह अल्लाह ताला और अहले ईमान को धोखा देने की अहमकाना और बेकार कोशिशें करते हैं। युखादिउन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अन्फुसहुम वमा यशउरून। वो अल्लाह ताला और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं और हकीकत में वो अपने ही आप को धोखा दे रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं रहे। ऐसे नादान लोग हमेशा अल्लाह ताला की इस इरशाद को याद रखें। सूरत नूर की आयत है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन्तशी अल्फाखिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम अज़ाबुन अलीमुन फिद्दुनिया वल आखिरती वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। यकीनन जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों के दरमियान बदकारी रिवाज पाए, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है और तुम कुछ नहीं जानते। तो अल्लाह ताला हम सब को और हमारे अहलो याल को ऐसे लोगों में शामिल होने से महफूज रखे। ये सूरत नूर की आयत नंबर 19 थी। तो क्या पता चला? यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी बहस पूरी हुई कि ख़वातीन का अहले इल्म का एहतसाब करना। जहाँ भी कोई इल्मी बात, कोई भी ऐसी चीज़ सामने आए जिसको आप और मैं फील करें कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर खामोशी से मान लेना, दुरुस्त समझ लेना, ये चीज़ सही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए इंसान को तहकीक कर लेनी चाहिए। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? अहले इख्तदार, यानी क्या औरत हुक्मरानों के किसी गलत फैसले या गलत काम के ऊपर कोई एक्शन ले सकती है? इंशाल्लाह ताला हम इसको शुरू करेंगे और अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि हम इसका बेहतरीन तरीके से हक़ अदा कर सकें। ख़वातीन का अहले इक्तदार का एहतसाब करना। तमहीद में कुछ बातें, कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मर्दों और औरतों में से हर एक सिन्फ के लिए दायरा अमल मुतय्यन फरमा दिया। अंदरून खाना मामलात औरतों के हिस्से में आए और बैरून खाना खिलाफत व सियासत के काम मर्दों के सपुर्द किए गए। قرون اولیٰ کی مسلمان خواتین نے رب علیم و حکیم کی تقسیم کار کو بدل و جان تسلیم کیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں اہل اقتدار کے احتساب کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے آداب شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اس فریضے کو بھی سر انجام دیا۔ یہاں چھ باتیں ہم پڑھیں گے، یعنی مختصر ٹاپک ہے لیکن بہت اہم ہے۔ پہلا واقعہ ہے حدی۔ حدی کس کو کہتے ہیں؟ جو جانور خانہ کعبہ میں جا کر قربان کرنے کی نیت سے ساتھ لے کر جایا جائے اس کو حدی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا یا جو عمرہ آپ نے کیا یا جس دفعہ عمرے کی نیت سے گئے تو وہاں آپ لوگوں کے ساتھ جانور تھے، ٹھیک ہے؟ تو حدی بھیجنے پر، زیاد کے عام لباس اتارنے پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتساب۔ زیاد بن ابی سفیان نے بیت اللہ کی طرف قربانی ارسال کی اور عام لباس اتار کر حالت احرام میں داخل ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع پانے پر حضرت عائشہ نے اس پر تنقید کی۔ امام ابو یعلیٰ نے عروہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، یقیناً میں رسول اللہ کی قربانی کے اونٹوں کے قلادوں کو بٹا کرتی تھی، یعنی ان کی رسیاں بنتی تھی، پھر رسول اللہ قربانی کے ان جانوروں کو بیت اللہ کی طرف بھیجنے کے بعد ہمارے درمیان مقیم رہتے اور کسی ایسی چیز سے اجتناب نہ کرتے جن سے محرم اجتناب کرتا ہے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ احرام کی حالت میں ہے۔ جو ہمیں یہ خبر پہنچی کہ زیاد نے قربانی کے جانور بھیجے اور کپڑے اتار دیے، اور اس پر عائشہ نے فرمایا، کیا وہاں اس کا کوئی کعبہ تھا جس کا طواف کرنے کے بعد اس نے دوبارہ کپڑے پہنے؟ ہمارے علم کے مطابق کوئی شخص ایسا نہیں کہ اس پر کپڑوں کا پہننا حرام ہوا ہو اور پھر طواف کیے بغیر ان کا دوبارہ پہننا اس کے لیے مباح ہوا ہو۔ قصے سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں، عائشہ نے اپنے احتساب کی اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر رکھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ارسال کرنے کے بعد عام لباس نہیں اتارا اور نہ ہی حالت احرام میں داخل ہوئے، تو کسی دوسرے کو ایسا کرنے کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، صحابہ اکرام اتنی اتنی باتوں میں نوٹ کرتے تھے، ہم آج کہتے ہیں کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اگر اس ایک اصول کو اپنی زندگی میں بنا لیں کہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کر کے دکھا دیا، تو آج آپ دیکھیں کہ کتنی بدعت کا گلا کما ہو جائے صرف ایک اصول پہ کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اگر آپ سوچیں کیا فرق پڑتا ہے، کپڑے ہی ہیں، عمرہ تو کر ہی لیا ہے، چلو جی احرام اور کپڑوں میں کیا فرق ہے؟ اور ایک بات لوگ کہتے ہیں، جی ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے نا، ہم اپنی نیت کے مطابق ہی اجر پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ حرج یہ ہے کہ بس وہاں رک جاؤ جہاں اللہ کے رسول نے کہا۔ یہ ایسے جیسے کسی ملک کے قوانین کو اوبے کرتے ہیں نا، تو بعض دفعہ کوئی بھی نہیں آ رہا ہوتا روڈ پہ، لیکن ہم کھڑے ہوتے ہیں ریڈ لائٹ پہ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں رکنا ہے، کوئی چلا جائے، پولیس روک لے، کیوں روکا، کیا حرج ہے؟ مجھے تو دکھ رہا تھا چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں تھی تو میں گزر گیا۔ تو حرج یہ ہے کہ کوئی اچانک گاڑی آتی تو آپ نقصان تو اٹھاتے نا، اور اس طرح ہر بندہ اگر قانون اپنے ہاتھ میں لے لے تو قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ نے احتساب میں سخت روی اختیار کی، شاید اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں زیاد بن ابی سفیان سے توقع نہ تھی کہ وہ ایسا غلط طرز عمل اختیار کریں گے۔ دوسرا واقعہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاکم مدینہ کو متعلقہ کو گھر واپس پلٹانے کا حکم دینا۔ متعلقہ کون ہے؟ طلاق یافتہ عورت، اور طلاق یافتہ کون سی؟ جو بھی عدت میں ہے۔ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کی بھتیجی کو طلاق دی گئی، تو اس کے باپ عبد الرحمن بن حکم دوران عدت ہی اس کو اپنے گھر لے گئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق کا کاغذ آتے ہی ماں باپ کے گھر میں ہے۔ یہاں نوٹ کیجئے، مسئلہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ عدت کا دورانیہ عورت کو مرد کے گھر میں گزارنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے امیر مدینہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی بھتیجی کو شوہر کے گھر واپس پلٹنے کا حکم دے۔ دیکھیے، یہ تھی ان لوگوں کی پابندیاں جو انہوں نے سنت اور سیرت کے ساتھ جوڑی ہوئی تھیں۔ ہم کہتے کیا حرج ہے، دل کھٹے ہو گئے، گھر ٹوٹ رہا ہے، کل بھی تو چھوڑنا ہے، آج ہی چلی جاؤں۔ آج صرف ہم اپنے ملکوں میں شادی اور نکاح اور طلاق کے مسئلے ہی دیکھ لیں تو پتہ نہیں ہمارا اپنا ہی کوئی ایک دین بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، جب اللہ نے کہا ہے کہ عدت کے دوران اس کو شوہر کے گھر رہنا ہے، واپس بھیجو۔ کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اس بات کو ماننا، اور حکمران تھے، حکمران تو ویسے ہی اپنے نشے میں ہو سکتے ہیں، لیکن عائشہ کو اس کا کوئی خوف نہیں آیا کہ غلط کام کرتا ہوا دیکھ کر کسی کو روکنا ہے میں نے، چاہے وہ حکمرانی کیوں نہ ہو۔ کیا پتہ چلا، اس کی دلیل دیکھیے کہ امام بخاری نے قاسم بن محمد اور سلیمان بن یسار سے روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ یحییٰ بن سعید بن عاص نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی طلق کو طلاق دی، اس کے والد عبد الرحمن نے اس کو وہاں سے منتقل کر لیا۔ عائشہ نے مروان کو پیغام بھیجا اور تب وہ امیر مدینہ تھا، اللہ سے ڈرو اور اس کو واپس پلٹاؤ۔ सुलेमान की रिवायत के मुताबिक मिरवान ने कहा, दर हकीकत अब्दुर्रहमान बिन हकम मुझ पर गालिब आ गया है। कासिम बिन मोहम्मद की रिवायत के मुताबिक, क्या आपको फातिमा बिनते कैस के वाक़े की खबर नहीं? आयशा ने फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के जिक्र ना करने में तेरा कुछ नुकसान नहीं। मिरवान ने जवाब दिया, अगर आपकी राय फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के मामले में निकलने की इजाज़त का सबब इसके खावन के रिश्तेदारों और इसके दरमियान मौजूद खिंचाव था, तो इन दोनों यानी मुतल्लिका और इसके तलाक देने वाले शोहर के दरमियान भी चपकलश कुछ कम नहीं। यानी जाहिर है कि लड़ाई होती है तभी तलाक होती है, या लड़ाई ना कहते इख्तलाफ हो तो तलाक होती है, लेकिन फिर भी जो सुन्नत तरीका है वही अपनाना है। क्या पता चला कि हाकिम मदीना के भाई और इसकी बेटी की गलती को उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इसलिए नज़रअंदाज नहीं किया कि इसका ताल्लुक हुक्मरान घराने से है, बल्कि पूरी सराहत और फसाहत से हाकिम ही को हुक्म दिया कि वो इस गलती का इजाला करे। बात वाज़े, यानी सिंपल सी बात है कि आपने उसको कहा कि तुम आप वापस भेजो उधर, क्योंकि अल्लाह का यही हुक्म है। उसने कहा हालात बड़े ख़राब है, ये वो, तो उसने कहा जो भी है। फिर दूसरा वाक्य है हज्जाज के इब्ने ज़ुबैर के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात पर असमा रज़ी अल्लाह अन्हो का नक्त यानी तनकीद। हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कत्ल किया, फिर इनकी वालदा हज़रत असमा के यहाँ आकर इन पर इल्ज़ाम तराशने शुरू किए। हज़रत असमा ने इनकी इल्ज़ाम की तरदीद की और इस पर वाज़े किया कि वह झूठ बोल रहा है। असमा कौन थी? हज़रत आयशा की बहन थी, बड़ी बहन थी। ठीक है, किसकी बीवी थी? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की। वो कौन थे? नबी सल्लम के फूफीजात भाई। तो फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा के भांजे लगे असमा की वजह से, और नबी सल्लम का रिश्ता अपने फूफीजात बेटे के नाते से चचा हुए। इमाम हाकिम ने अबू सिद्दीक रहमहुल्ला से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, जब हज्जाज ने इब्ने ज़ुबैर पर काबू पाया तो इन्हें कत्ल कर दिया और इनका मुसला किया। मुसला समझते हैं, यानी उसकी बेहुरमती की लाश की। फिर इनकी वालदा असमा बिनत अबी बकर के यहाँ आया तो उन्होंने फरमाया, तू मेरे यहाँ दाखिल होने की इजाज़त कैसे तलब कर रहा है और तूने मेरे बेटे को कत्ल किया है? वो कहने लगा, तेरे बेटे ने हरम इलाही में इल्हाद किया और मैंने इसको इसके इल्हाद और नाफरमानी ही की हालत में कत्ल किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसको दर्दनाक अजाब चखाया और इसके साथ ऐसे ऐसे किया। उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन, तूने झूठ पका है, अल्लाह ताला की कसम, बिला शक व शुबा तूने इसको ऐसी हालत में कत्ल किया है कि वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाला, बहुत ज़्यादा क़्याम करने वाला, वालदैन के साथ नेकी करने वाला और इस दीन की हिफाजत करने वाला था। अगर तूने इसके लिए इसकी दुनिया को बर्बाद किया है तो यकीनन इसने तेरे लिए तेरी आखरत को बर्बाद कर दिया है। बिला शक व शुबा रसूलुल्लाह ने हमें बतलाया था कि सकीफ कबीले से दो बहुत बड़े झूठे नमूदार होंगे, इनमें से दूसरा शख्स पहले से बदतर होगा और वो बहुत तबाही करने वाला होगा। ए हज्जाज, वो दूसरा शख्स तू ही है। अब ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज्जाज का किस्सा क्या था? तो बुनियादी तौर पर यह एक सियासी जंग थी। आप देखिए कि बहुत सारे यानी इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि दो नेक लोगों के बीच में भी ऐसे हो जाता है। तो ये वाक्यात पढ़ के कभी भी सहाबा के बारे में नहीं ख्याल लाना चाहिए, ना तो हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के लिए कुछ कहना चाहिए ना हज्जाज के लिए कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये वाक्यात अल्लाह की नज़र में है, अल्लाह जाने और उसके बंदे जाने। हम अमल की बातें ले सकते हैं। पहली बात देखिए कि हज़रत असमा बिनते अबी बकर ने किस कदर जुर्रत, बेबाकी और सराहत और वजाहत के साथ सफ़ाक और ज़ालिम हज्जाज के गलत इल्ज़ाम की तरदीद की। और इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, इस बात के कहने वाले सिद्दीक अकबर की साहबजादी ज़ात अनतक़तैन है। हज़रत असमा की तरफ इशारा है, यानी एक माँ के लिए कितना सब्र है ना, कि एक तो उनके बच्चे को मारा जाए, फिर उसकी लाश की बेहुरमती की जाए, लोग जिस्म के हिस्सों को काट कर उसका हार बनाकर गलों में डालते थे, तो ये एक इंसान की तौहीन है। अब चौथा वाक़या है इद्दत हामिला के मौके फारूकी पर उम्मे तुफैल का एहतसाब। शोहर की वफ़ात पर हामिला औरत की इद्दत के मुतल्लिक हज़रत उमर फारूक और हज़रत उबई बिन काब के दरमियान तकरार हुई। हज़रत उबई की राय यह थी कि बच्चे को जन्म देने पर ऐसी औरत की इद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन हज़रत फारूक ने इससे इत्तफाक ना किया। हज़रत उम्मे तुफैल ने दोनों को झगड़ते देखा तो दोनों ने सुन्नत की रोशनी में हज़रत फारूक आज़म का एहतसाब किया, यानी इद्दत ख़त्म हो जाती है। हज़रत उमर का ख्याल था कि नहीं हुई, तो उस पर फिर उनसे पूछा गया। इमाम अहमद ने उबई बिन काब की बीवी उम्मे तुफैल से रिवायत नकल की है, उन्होंने बयान किया, यकीनन उन्होंने उमर बिन ख़त्ताब और उबई बिन काब को आपस में झगड़ते हुए सुना तो उन्होंने कहा, उमर बिन ख़त्ताब सबी असलमी से क्यों दरियाफ़्त नहीं कर लेते? इनके शौहर फौत हुए और वह हमल से थी, इसके कुछ दिन बाद उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो रसूलुल्लाह ने इनका निकाह कर दिया। क्या पता चला, हज़रत उमर अपने इल्म व फ़ज़ल और उम्मत में दूसरे दर्जे पर फायज़ होने के बावजूद मासूम नहीं थे। इनकी हर बात हर हालत में हुज्जत हो ये लाजमी नहीं था। इमाम मालिक ने खूब बात कही, कुल्लु अहदिन युखज़ु मिन कौलिही व युतरकु इल्ला साहिबा हाज़ल कब्री रदी अल्लाह अन्हु। इस कब्र वाले के सिवा हर किसी की बात को लिया भी जाएगा और छोड़ा भी जाएगा। किसकी? नबी सल्लम की तरफ इशारा है ना। मुराद ये कि ईवन अबू बकर और उमर ही क्यों ना हो, सिर्फ अल्लाह के नबी की शख्सियत ऐसी है कि आप जो कह दें उसको माना जाएगा। हज़रत फारूक आज़म अपने अजीम मुकाम व मरतबे के बावजूद इख्तसाब से बाला ना थे। हज़रत उम्मे तुफैल ने अपने इख्तसाब की तायीद सुन्नत मुस्तफ़ा से की, जो कि तमाम कायनात के इंसानों की बात और अमल से बुलंद वाला है। इसके मुकाबले में किसी की भी बात की कोई हैसियत नहीं। इसकी मुखालिफ हर बात को छोड़ा जाएगा, लेकिन इसको किसी वजह से भी नहीं छोड़ा जाएगा। इमाम नववी ने कितनी उम्दा बात फरमाई, जब सुन्नत साबित हो जाए तो इसको कुछ लोगों के या अक्सरियत के या सब लोगों के छोड़ने की बिना पे तर्क ना किया जाए। आज अल्लाह करे कि यही मेयार हम सब का हो जाए, हर बंदा अपनी बात मनवाने को तुला हुआ दिखता है। फिर कुरैशी खातून का हक़ महर के मुतल्लिक फारूकी ऐलान पर एहतसाब। ये बड़ा खूबसूरत वाक़ है और मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि ये वाक़ आए और हम इसको पढ़ें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर रसूल करीम पर तशरीफ़ लाए और लोगों को एक मुकर्रर मकदार से ज़्यादा हक महर देने से मना फरमाया। इस पर एक कुरैशी खातून ने इनका एहतसाब किया। दलील क्या है? इमाम अबू याला ने मसरूक से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए लोगों, तुम्हारा औरतों के हक़ के महर में इजाफ़ा क्या है? रसूलुल्लाह के ज़माने में हक़ के महर 400 दिरहम या इससे भी कम था। अगर हक़ के महर ज़्यादा देना अल्लाह ताला के यहाँ तकवा या इज़्ज़त की बात होती तो तुम इस बारे में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़माने के लोगों पर सबकत नहीं ले जा सकते थे। ख़बरदार, आइंदा मैं किसी आदमी के मुतल्लिक ये ना सुनूं कि इसने किसी औरत को 400 दिरहम से ज़्यादा हक महर दिया है। रावी ने बयान किया, फिर वो मिंबर से उतरे तो कुरैश की एक खातून ने इनका रास्ता रोक लिया और अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, आपने 400 दिरहम से ज़्यादा हक महर देने से मना फरमाया है? आपने फरमाया हाँ। इस खातून ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बारे में जो नाजिल फरमाया आपने उसको नहीं सुना? उन्होंने फरमाया, वो क्या है? इस औरत ने कहा, क्या आपने अल्लाह ताला का फरमान नहीं सुना जिसके मानी का तर्जुमा यह है कि और तुमने इनमें से किसी औरत को ख़जाना दिया हो। कुरान में आता है ना, वही नातई तहन किन्तारन, कि औरत को ख़जाना भी दिया तो तलाक की सूरत में वापस नहीं ले सकता। ये इशारा था औरत का। रावी ने कहा, उन्होंने कहा, ए मेरे अल्लाह, मैं आपकी मग़फ़रत का सवाल करता हूँ, सारे लोग उमर से ज़्यादा दीन को समझने वाले हैं। फिर वो वापस आए और मिंबर पर चढ़े और इरशाद फरमाया, लोगों, यकीनन मैंने तुम्हें औरतों के हक़ महरों में 400 दिरहम से ज़्यादा देने से मना किया था। मैं अपना सबका फ़ैसला वापस लेता हूँ और ऐलान करता हूँ, अपने माल में से जितनी मकदार में कोई हक़ महर देना चाहे दे दे। के पाबंदी लगाई और फिर उठा ली। कितनी जल्दी उन्होंने अल्लाह के दीन को माना। अल्लाह आज हमें भी ऐसा बना दे। अबू याला ने बयान किया, मेरा ख्याल है कि उन्होंने फरमाया कि जिसका दिल ज़्यादा देना चाहे वो दे दे। एक दूसरी रिवायत में आता है कि उमर ने फरमाया, यकीनन एक औरत ने उमर से झगड़ा किया और इन पर गालिब आ गई। क्या कह रहे हैं? कि औरत मुझसे जीत गई। एक और रिवायत में आता है कि उमर कहते हैं, सारी दुनिया के लोग उमर से ज़्यादा फकीह हैं, यानी उमर को सबसे कम इल्म है। एक रिवायत में यहाँ तक आता है कि उमर कहते हैं कि ए उमर, बाजारों के भाव ताव ने तुझे ये बात अल्लाह के नबी से सुनने से या इस मसले को समझने से दूर कर दिया। यानी खुद को मलामत कर रहे हैं कि मेरे इल्म की कमी है कि मैं कुरान की इतनी वाज़ह आयत नहीं समझ सका या मुझे इस वक्त याद नहीं रही या भूल गई। तो कितनी आजजी होगी अंदर से भी, तो एक बात और एक आम औरत, और दोबारा मिंबर से जाके फिर लोगों को जमा करके ये बात कही। बाद में तो कोई कहता, अच्छा चुप करो ना, मेरी बेइज्जती ना हो, लोग कहेंगे उमर को ये मसला नहीं पता। इज्जत बेइज्जती कोई नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के यहाँ इज्जत है। कभी गलती से कोई बात गलत बता दें तो उसको ठीक कर लें। सबके बीच में बोली थी तो सबके बीच में बताएं, लिख के कही थी तो लिख के करें, ताकि आपकी वजह से कोई गलत चीज़ आम ना हो जाए। किस्से से फ़ायदा क्या मिला? पहली बार, टोकने वाली खातून का औरत होना और गलत फ़ैसला करने वाले का अमीरुल मोमिनीन होना गलत फ़ैसले पर एहतसाब की राह में रुकावट ना बन सका। यानी एक तरफ औरत कमज़ोर हस्ती, आम औरत को ये भी नहीं कि बड़ी मारूफ औरत थी, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि उमर फारूक थे जिनका जलाल ही बहुत था, और कहाँ फिर वो खलीफा हों। फिर कुरैशी खातून ने अपने इख्तसाब की तायद कुरान करीम से की। ठोस, मजबूत और कभी इख्तसाब है ही वो जिसकी तायद कुरान करीम और सुन्नत मुस्तफ़ा से हो। तीसरी बात, उम्र फारूक फरमाने इलाही के सामने फौरन झुक गए, ना तावील की ना इजहार तरद्दुद किया, बल्कि बरसरे मिंबर अपने सबका फैसले को वापस लेने का ऐलान फरमाया। हुर बिन कैस बिन हसन ने इनकी सच्ची तस्वीर कशी की है, वकाना वक्काफन इन द किताबिल्लाही अज़्ज़ा वजल, वो अल्लाह तआला की किताब के सामने बहुत ज्यादा रुक जाने वाले थे। सच बात यह है कि अगर वो ऐसे ना होते तो फारूक ही ना होते। ऐ अल्लाह हमें इस बारे में इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, और आज के हुक्मरानों को ख़ास तौर पे, और आज देखिए अवाम भी जाहिल तो हुक्मरान भी बेचारे वैसे ही हैं, उस दौर की आम खवातीन भी कुरान के मिजाज को कितना अच्छा समझती थी। फिर उम्मे दरदार रदी अल्लाह अन्हा का अब्दुल मलक को लानत खादिमा से रोकना। अब्दुल मलक बिन मिरवान की दावत पर उम्मे दरदा इनके यहाँ जाया करती थी और जनान खाने में इसके घर वालों के साथ रात बसर किया करती। एक रात उन्होंने अब्दुल मलक की खादिमा को लानत करते हुए सुना तो इनको ऐसा करने से मना फरमा दिया। दलील है, इमाम अहमद ने जैद बिन असलम से रिवायत नकल की, अब्दुल मलक बिन मिरवान हज़रत उम्मे दरदा को अपने यहाँ तशरीफ़ लाने की दावत दिया करता था। वो तशरीफ़ लाती और इसकी औरतों के साथ रात बसर करती और वो इनसे नबी सल्लम के मुतल्लिक पूछा करता था। रावी ने बयान किया, वो एक रात उठा, अपनी खादिमा को आवाज़ दी, लेकिन उसने हाजिर होने में ताखीर की, तो इसने इस पर लानत की। जैसे आप मुलाजिम को बुलाएं और वो थोड़ी देर ना आए तो बोलना शुरू हो जाए, किधर हो, क्या कर रहे हो, ये है वो, उसने लानत की। उम्मे दरदा ने फरमाई, लानत ना कीजिए, क्योंकि अबू दरदा ने मुझे ये हदीस सुनाई कि यकीनन उन्होंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, यकीनन बहुत ज़्यादा लानत करने वाले रोज़े क़यामत ना गवाह होंगे और ना ही शिफात करने वाले। क्या पता चला कि अब्दुल मलक की मेहमान नवाजी और इसका मुकाम व मर्तबा उम्मे दरदा के इस पर एहतसाब की राह में रुकावट ना बन सका। दूसरी बात है, उम्मे दरदा ने अपने एहतसाब की तायद कौले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। तीसरी बात है, अबू दरदा ने हदीस शरीफ को हजरत से सुना, फिर वो हदीस अपनी बीवी को सुनाई और इनकी बीवी ने इसी हदीस की रोशनी में अब्दुल मलक बिन मिरवान का एहतसाब किया। जो हजरात इस बात की ख्वाहिश रखें कि इनकी औरतें फरीज़ा एहतसाब सर अंजाम दें, वो अपनी औरतों को कुरान और सुन्नत का इल्म सिखाएं, क्योंकि एहतसाब का मंबा व मावा किताब व सुन्नत है। तो ये थे 6 वाक्यात जिसमें हमने देखा कि औरत हुक्मरानों तक पर भी तनकीद कर सकती है, लेकिन कौन सी औरत करेगी? जिसके अंदर इल्म होगा, जिसको पता होगा। अच्छा, हमारा कुरान के साथ कितना ताल्लुक है? ये बहुत अहम सवाल है।